नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जीएसटी अधिकारियों ने देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 4,900 से अधिक जाली जीएसटी पंजीकरण रद्द किए। इसके अलावा अभियान में ऐसे 17,000 जीएसटी आईएन की पहचान की गई जो मौजूद नहीं है। एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। अभी जीएसटी के तहत करीब 1.40 करोड़ कंपनियां या कारोबार पंजीकृत हैं। जीएसटी लागू होने से पहले पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में ये संख्या आधी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है और देश आज तकनीकी विनिर्माण और नवाचार के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने ये बात मीडिया में छपी एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। इस खबर के मुताबिक ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज ने संशोधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत भारत में उच्च मात्रा वाले सर्वर का निर्माण शुरू करने के लिए मूल डिजाइन उपकरण निर्माता VVDN के साथ साझेदारी की। कंपनी ने कहा कि अमेरिका मुख्यालय वाली कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी और समाधान प्रदाता कंपनी हरियाणा के मानेसर में VVDN के संयंत्र से अगले 5 साल में $1 अरब से अधिक मूल्य के सर्वर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है। हमारे युवाओं द्वारा संचालित भारत तकनीकी विनिर्माण और नवाचार के लिए विश्व के अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को अपने नए मॉडल इनविक्टो को बाजार में उतारने के साथ ही पहली बार 20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले खंड में कदम रखा। इस बहुउद्देशीय वाहन की कीमत 24.8 लाख रुपए से 28.4 लाख रुपए के बीच रखी गई है। तीन कतारों वाली सीटों से सजी इनविक्टो को तीन श्रेणियों में उतारा गया है। इनविक्टो 2 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है। मारुति सुजुकी को उम्मीद है कि इनविक्टो के आने से MPV खंड में उसकी मजबूती और बढ़ेगी। इस खंड में उसके पास पहले से ही लगभग 50% बाजार हिस्सेदारी है। मारुति सुजुकी इस नए मॉडल का हाइब्रिड संस्करण टोयोटा किलोस्कर मोटर से हासिल करेगी। टोयोटा और सुजुकी के बीच इस संबंध में वैश्विक समझौता है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने बुधवार को कहा कि भारत को अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है, जिससे देश के युवा को अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में काम करने वाली आबादी में आई गिरावट आने का फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा, वैश्विक स्थिति ये है, ज्यादातर देशों में लोगों की उम्र बढ़ रही है और काम करने वाले लोगों की आबादी कम हो रही है। चीन, अमेरिका और EU में ये होने वाला है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका को छोड़कर भारत सबसे बड़ा ऐसा देश होने वाला है जो दुनिया में काम करने योग्य जनसंख्या में सकारात्मक रूप से योगदान करेगा। पनगड़िया भारत के मध्यम वर्ग का उदय रिपोर्ट को जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ FTA पर वार्ताओं का दौर जल्द से जल्द पूरा हो जाए, क्योंकि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते बाजारों पर अपना ध्यान फिर से केंद्रित कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन ने इन करारों के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी। इन करार में सेवा क्षेत्र और निवेश पर समझौता भी शामिल होगा। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री निगेल हडल्स्टन ने PTI भाषा के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि समझौते में आधा काम पूरा हो चुका है और जल्द से जल्द वार्ता को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने FTA को लेकर अच्छी प्रगति की। हमने समझौते के आधे अध्यायों पर वार्ता पूरी कर ली। हम माल और सेवाओं दोनों पर व्यापक समझौता चाहते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समझौता काफी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, भारत के साथ इस FTA को हम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंध हैं। हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने निवेशकों को देश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में निवेश का आग्रह करते हुए ये बात कही। सिंह ने हरित हाइड्रोजन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए बुधवार को यहां निवेशकों से कहा कि हम आपको हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास में मदद करेंगे, आप आए और हमारे साथ भागीदारी करें। सम्मेलन में 2,500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सिंह ने कहा, निवेशक इलेक्ट्रोलाइजर के विकास, हरित हाइड्रोजन के परिवहन तंत्र, हरित इस्पात और सीमेंट के विनिर्माण में हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों में भागीदारी कर सकते हैं। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपने व्यापार घाटे को 43% कम करने में कामयाबी हासिल की। बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जून में समाप्त वित्त वर्ष में व्यापार घाटा एक साल पहले की तुलना में 43% घटकर $27.55 अरब पर आ गया। वित्त वर्ष 2021-22 में पाकिस्तान का व्यापार घाटा बढ़कर $48.35 अरब हो गया था। व्यापार घाटे में बड़ी गिरावट का श्रेय आयात में कटौती के सरकारी प्रयासों को दिया गया। रिपोर्ट कहती है कि विदेशी मुद्रा भंडार की भारी किल्लत का सामना कर रहे पाकिस्तान ने आयात बोझ कम करके व्यापार घाटे को कम किया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।